आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनम है और हम लोग आपकी फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे जिसका नाम है लॉस्ट प्रिंस। सो इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था 2 स्टोरीज को। सबसे पहले स्टोरी जो थी वो थी साहिब आलम के बारे में, जो कि एक माइग्रेंट था बांग्लादेश से और वो दिल्ली से कुछ दूर पे सीमापुरी में जाकर के उन लोगों ने अपनी खुद की एक बस्ती बसाई हुई थी। वहां हमें देखने को मिलता है कि किस तरह साहिब आलम अपने नाम का मतलब भी नहीं जानता, जिसका मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड का किंग। वो अपने नाम का मतलब नहीं जानते हुए वो अपनी छोटी सी दुनिया में ही खुश है। वो कचरे में बहुत कुछ, कभी सोना, कभी जो है वो पैसे, ये सारी चीजें ढूंढता है और जब उसे मिल जाती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसे अपने एल्डर्स यानी उसके जो बड़े हैं, उसके माँ बाप हैं, बाकी उसके जो रहने वाले उसके साथ हैं, उनकी कंडीशन के बारे में उसे ज्यादा अंदाजा नहीं है, लेकिन वो अपनी छोटी खुशियों में ही खुश रहता है। दूसरी कहानी जो है वो होती है मुकेश के बारे में, जो कि फिरोजाबाद से होता है। एंड फिरोजाबाद जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है चूड़ियों को बनाने में, और जनरेशन से वो लोग एक ही काम करते आ रहे हैं, यानी बैंगल मेकिंग का। तो मुकेश की फैमिली भी जो है वो इसी चूड़ी बनाने के कारोबार में सालों से और इनफैक्ट जनरेशन से लगी हुई है। उसके दादा और दादा के दादा भी यही काम किया करते थे। उन लोगों को कोई और स्किल नहीं आता, कोई और हुनर नहीं आता है सिवाय इसके कि वो लोग बैंगल बना सके। भले ही वो इतनी डेंजरस एक ब्लास्ट फर्नेस में काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग सिचुएशन के हाथों मजबूर हैं कि वो अपने बच्चों को भी इतनी खतरनाक जगह पे दिन रात रखें और उनसे काम करवाएं। हम लोग अभी मुकेश की कहानी देख रहे थे, हम लोगों ने पेज नंबर 18 तक कर रखा था इस चैप्टर को। अब हम लोग पेज नंबर 18 लास्ट पैराग्राफ से कंटिन्यू करेंगे। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious cycle of middlemen who trap their fathers and forefathers. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. There is no leader among them, no one who could help them see things differently. Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. Listening to them, I see 2 distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other, a vicious cycle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. Together, they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. To do anything else would mean to dare, and daring is not part of his growing up. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic, he repeats. He will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. I will walk, he insists. Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. No, he says, staring at the ground. In his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few airplanes fly over Firozabad. So, जब राइटर ने वहां पे कुछ जो मर्द खड़े थे, कुछ यंग मैन खड़े थे वहां पे, उन्होंने कहा कि तुम लोग अपने आप को एक कोऑपरेटिव में क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते हो, वो हो जाएगा तो तुम लोगों के लिए भी अच्छा होगा। जिस तरह से अमूल क्या है, एक कोऑपरेटिव है, यानी आप पूरे गांव वाले एक काम में अपना योगदान देते हैं एंड देन वहीं से गवर्नमेंट उनके काम को पिकअप कर लेती है, और इस वजह से ये जो बीच में जो मिडिल मैन आते हैं, साहूकार आते हैं, ये सारी चीजें जो है वो हट जाएंगी। लेकिन वो लोग ये जवाब में कहते हैं कि अगर हम लोग कोऑपरेटिव में अपने आप को ऑर्गेनाइज कर भी लिए तो भी हम ही लोग हैं जिन्हें पुलिस पकड़ के जेल में बंद करेगी, पीटेगी, क्योंकि हम लोग एक इल्लीगल काम कर रहे हैं। तभी राइटर को यह एहसास होता है कि इन लोगों के पास कोई भी अपना लीडर नहीं है जो इन्हें किसी नई दिशा की ओर दिखाए। उन्हें उस प्रॉब्लम से निकालने का कुछ सलूशन बताए। वो लोग काफी अपने ही हालात से जूझते जूझते थक चुके हैं और वो बिल्कुल ट्रैप हो चुके हैं अपनी इसी साइकिल में। ये लोग गरीबी से लड़ते लड़ते इतना भी उनमें हिम्मत नहीं बची है कि वो लोग कुछ डेयरिंग कर सके, है ना, कुछ हिम्मत वाला काम कर सके। जब राइटर ने उन लोगों से बात करी तो उन्हें दो चीजें समझ आई, और वो दो चीजें क्या थी कि ये दो रीजन है जिसकी वजह से ये लोग कभी भी अपने हालात से बाहर नहीं आ पाते। पहला बात तो ये कि वो लोग एक कास्ट में बॉर्न हुए हैं, और उस वक्त का जो बहुत पहले का जमाना था उसमें क्या होता था कि एक पर्टिकुलर कास्ट वाले लोग एक पर्टिकुलर काम ही करते थे, है ना। जैसे एक कास्ट है तो वो सिर्फ नाई ही होती थी, वो सिर्फ बाल ही कट करते थे। जो ब्लैक स्मिथ है वो सिर्फ वो ही काम करेंगे जो आयरन से रिलेटेड होता है। उसी तरह से जो कि मुकेश का कास्ट है वो लोग चूड़ियां बनाते हैं, और इस वजह से वो लोग उस प्रैक्टिस से, उस कास्ट सिस्टम से अपने आप को बाहर नहीं ला पा रहे हैं। और दूसरा, अगर ये लोग कास्ट सिस्टम को हटाना चाहे तो भी इन लोगों की गरीबी इतनी ज्यादा है और इन लोगों का एडवांटेज इतने ज्यादा लोग उठाते हैं, जैसे कि जो मिडिल मैन होते हैं, साहूकार होता है, पुलिस वाले होते हैं, जो कि खुद लॉ के अपने आप को जो कानून के रक्षक बताते हैं, वो सारे लोग मिल करके, एंड लास्टली जो नेता होते हैं, वो सब इनके कंडीशन का इन लोगों को सिर्फ वोट बैंक के जैसे यूज करते हैं। जब इलेक्शन आता है तब इन लोगों को जो है इम्पोर्टेंस मिलती है, और एक बार इलेक्शन खत्म तो कोई देखने भी नहीं जाता है कि ये लोग जिंदा भी हैं कि मर गए। इन्हीं दो कारणों की वजह से ये लोग कभी भी अपने साइकिल से बाहर आ ही नहीं पाते हैं, कभी भी हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं कि ये लोग भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन जब राइटर को मुकेश में ये चेंज, ये स्पार्क दिखता है कि वो कुछ अलग करना चाहता है, उसकी सोच बाकियों से अलग है, वो अपने बाप और अपने दादा जैसे इसी बिजनेस को कैरी ऑन नहीं करना चाहता है, बल्कि वो बार बार कह रहा है कि उसे मोटर मैकेनिक बनना है, और वो चाहता है कि वो पास के गैराज में जाकर के सीखे। लेकिन जहां मुकेश रहता है, जिस बस्ती में वो रहता है, वहां से गैराज भी काफी दूर है। और जब राइटर ने उससे पूछा कि तुम वहां कैसे जाओगे, उसमें इतनी ज्यादा जो लगन पाई गई है कि वो वहां से चल करके जाने को भी तैयार है। तभी राइटर उससे एक सवाल कर देती है, वो कहती है कि क्या तुमने कभी हवाई जहाज उड़ाने का सोचा है। और तभी बेचारा मुकेश जो है वो काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, और वो दबी जबान में कहता है कि नहीं, क्योंकि शायद उसने इतने ज्यादा हवाई जहाज देखे ही नहीं है कि उसे पता हो। फिरोजाबाद में उसने देखा है कि बहुत सारी कार्स चलती हैं, तो उसका इंटरेस्ट है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, लेकिन उसके खुद के लाइफ में अभी तक उसने इतना ज्यादा एयरप्लेन्स नहीं देखे हैं, क्योंकि बहुत कम ही एयरप्लेन्स जो है वो फिरोजाबाद के ऊपर से जाती हैं। इस वजह से उन लोगों के सपने भी जो है वो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर हो जाता है खत्म। इन दोनों ही कहानियों में हम लोगों ने कैसे देखा कि जो बच्चे होते हैं वो कितने मासूम होते हैं, वो थोड़े अनअवेयर होते हैं अपने सराउंडिंग के लिए, और उन्हीं के बचपन में वो चाह होती है कि वो लोग जो है वो अपनी जिंदगी का, अपनी लाइफ का काया पलट कर सके। लेकिन फिर मजबूरी के हाथों उन लोगों को हार मान जानी पड़ती है, और फिर वो लोग भी उसी साइकिल का पार्ट हो जाते हैं जिस साइकिल का पार्ट उनके दादा परदादा हो चुके थे। तो इस एक्सप्लेनेशन के बाद चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट नंबर वन, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। सो ये तो बहुत कॉमन है, स्पेशली इंडिया में ये जो माइग्रेशन होता है जहाँ गाँव से लोग शहर आते हैं, और कभी कभी छोटे शहर से बड़े शहर भी आते हैं, उनका मेन रीजन यही होता है जॉब, यानी अपने घर को पालना, अपने बच्चों के लिए एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना। सो मेनली उनका यही रीजन होता है कि जो चीज़ें, जो फैसिलिटी उनको गांव में उनके नहीं मिलती है, छोटे शहरों में नहीं मिलती है, वो शहर आकर के वो सारी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं, और फिर वहां पे भी उनको कोई ठिकाना नहीं मिलता है और वो लोग किधर के भी नहीं बचते हैं। नंबर टू, वुड यू अग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट। Why do you think this happens in the incidents narrated in the text? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बैठता है अगर हम लोग बात करें गरीब बच्चों की। गरीब बच्चों से कोई भी जो है आकर के प्रॉमिस कर देता है, लेकिन वो लोग खुद ही भूल जाते हैं कि उन्होंने उनसे कुछ प्रॉमिस भी किया था, उनसे कुछ कहा भी था, क्योंकि वो शायद औरों की जिंदगी में उतने इम्पोर्टेंट होते ही नहीं है। लेकिन वो जो बच्चे होते हैं जिनसे प्रॉमिस की जाती है, उन्हें एक उम्मीद जग जाती है, और फिर जब वो चीजें लोग पूरी करके नहीं उन्हें देते हैं तो काफी वो लोग निराश हो जाते हैं। इस स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब राइटर ने बिना कुछ सोचे समझे बस उसने कह दिया ये बात कि अगर जब मैं स्कूल खोलूंगी तो तुम क्या मेरे स्कूल में आओगे, और उस बच्चे को उम्मीद हो जाती है, साहब को उम्मीद हो जाती है कि ठीक है ये जो है मेरे लिए स्कूल खोल के देंगी सो दैट के मैं पढ़ पाऊं। नंबर 3, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। सो हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा कि किस तरह से फिरोजाबाद की जो चूड़ी बनाने वाली इंडस्ट्री होती है वहां से लोग बाहर ही नहीं आ पाते हैं, और उसके पीछे जो साजिश होती है वो दो तरह की होती है। पहली बात तो उन्हें कास्ट के नाम पे, उन्हें जात पात के नाम पे रोक दिया जाता है कि तुम्हारी जात वाले लोग यही काम करने के लिए जन्मे हैं, और इसी वजह से तुम लोग किसी और प्रोफेशन को हाथ नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये शायद भगवान की ही मर्जी है कि तुम लोगों के लिए उन लोगों ने काम चुना है, प्रोफेशन चुना है। और दूसरा, अगर वो लोग ये सारी चीजों से उभर भी आए तो भी जो मनी लेंडर्स हैं, यानी जो साहूकार्स हैं, जो मिडिल मैन है, पॉलिटिशियंस हैं, पुलिस वाले हैं, ये सारे लोग इतना ज्यादा एडवांटेज ले लेते हैं, इतना डरा देते हैं इन लोगों को कि ये लोग चाह करके भी बाहर नहीं आ सकते हैं अपने उस साइकिल से, अपने उस सर्कल से। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, नंबर 1, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिस्ट्री। तो मुकेश के जो सपने हैं वो अपने जात वालों से थोड़े अलग हैं, जहाँ पे उसके बड़े भाई ने भी वही सोचा कि मुझे भी अपने बाप के जैसे चूड़ियां बनाना है, लेकिन मुकेश क्या चाहता है कि वो क्या बनना चाहता है, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। उसके सपने जो हैं उसकी कहीं ना कहीं औकात से काफी बड़े हैं, लेकिन एक जरिया है जिससे मुकेश जैसे लोग अपने सपनों को सच कर सकते हैं। उनके पास ज्यादा कुछ है नहीं, उनके पास ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, ना पैसे है ना कुछ है, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लगन से काम करना चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए, और अपने सपनों को कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग सपने छोड़ देंगे थक हार के, उनके पीछे भागना छोड़ देंगे, तो उनकी भी लाइफ जो है वो वापस जिस तरह से उनके पूर्वजों की रही है वैसे ही हो जाएगी। नंबर 2, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। सो हम लोगों ने देखा कि ये जो ग्लास बैंगल की इंडस्ट्री है वहां पे बहुत सारे ऐसे जोखिम भरे काम है, जैसे कि सबसे पहला तो कि वहां पे इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर पे काम होता है, वहां की जो भट्टियां होती हैं वो बिल्कुल सुलग रही होती हैं, और वो लोग बहुत देर तक वहीं उस अंधेरे जगह पे काम कर रहे होते हैं, इससे बहुत कुछ हो जाता है, उनके हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। दूसरी बात कि जब वो चूड़ियों को पॉलिश करते हैं और फिर जब जो कांच के टुकड़े हैं उनकी जो डस्ट है वो उड़ करके उनके आंखों में जो जाती है, तब वो उन्हें अंधा भी बना देती है। तपती हुई भट्टी में इतने देर तक अपने आंख गड़ा करके काम करने का ये नतीजा निकलता है कि जो उनकी आंखें होती हैं वो अंधेरे में ज्यादा एडजस्ट कर जाती हैं, यानी जब इतने देर तक वो लोग अंधेरे कमरे में बैठ करके काम कर रहे होते हैं और कंटिन्यूस आग को देखते रहते हैं, ये सारी चीजें जो है उनके आंखों पे काफी गलत असर डालती है, और इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर रखा है कि एटलीस्ट बच्चे जो हैं वो इस तरह की इंडस्ट्री में, जो ग्लास इंडस्ट्री होती है, भले वो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री हो या कोई और भी, यहाँ बच्चे नहीं आएंगे। नंबर 3, व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। सो अगेन, जो चाइल्ड लेबर है, क्योंकि बच्चे इतने टेंडर एज के होते हैं, वो जो है वो किसी भी कंट्री का फ्यूचर होते हैं, और अगर उन्हें बचपन से कामों में घुसा दिया जाएगा, उन्हें एजुकेट नहीं करा जाएगा, उन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं जाएगा, तब हमारे खुद की कंट्री का भी फ्यूचर कुछ निकल नहीं पाएगा, और इसी वजह से चाइल्ड लेबर को हटाना बहुत जरूरी है। ये हम लोग कर सकते हैं लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करके, और जैसे कि भले ही हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा कि भले ही हमारे गवर्नमेंट ने ये बैन कर रखा है कि बच्चे काम नहीं करेंगे जो बाल मजदूर हैं वो उन्हें जेल हो सकती है, उनके माँ बाप को जेल हो सकती है, लेकिन फिर भी जो कि पुलिसमैन हैं और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो इस काम में पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा रहे हैं। उनके तरफ से जो है वो हम लोग देख रहे हैं एक लैग है, वो लोग अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि आज तक जो बच्चे हैं वो इस ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कानून का भी सख्त होना और टाइमली उस जगह को चेक करना, वहां पे रेड करना कि कहीं फिर से लॉ ब्रेकिंग तो नहीं हो रहा है। नाउ थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, यहाँ पे हमें तीन लिटररी डिवाइसेस के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहला है हाइपरबोली, अ मेटाफर एंड सिमिली। सो हाइपरबोली क्या होता है कि अगर आप किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हो, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं गार्बेज टू देम इज गोल्ड, जबकि ऐसा नहीं है, हम लोग काफी बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं तो थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट होता है। मेटाफर जो है दो अनरिलेटेड चीजों को हम लोग रिलेट करते हैं, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं द रोड वॉज अ रिबन ऑफ लाइट, है ना। तो ये है कि दो जो चीजें जो रिलेटेड नहीं है आपस में, उन लोगों को रिलेट करना और उसमें से एक मीनिंग निकालना, उसको हम लोग मेटाफर कहते हैं। और सिमिली हम लोग किसी चीज से डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं, जैसे एज वाइट एज स्नो, बिल्कुल स्नो के जैसे सफेद। तो चलिए क्विकली इस एक्सरसाइज को भी हम लोग देख लेते हैं। नंबर वन, साहेब आलम विच मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स इज डायरेक्टली इन कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट साहेब इन रियलिटी इज। सो यहाँ पे जो है हाइपरबोली का यूज किया गया है, जहाँ पे चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। नेक्स्ट, ड्राउन इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन, ये जो है एक मेटाफर है। नेक्स्ट, सीमापुरी अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफरिकली, ये कॉन्ट्रास्ट यूज किया गया है। नेक्स्ट, फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज अ मींस ऑफ सर्वाइवल। और यहाँ पे जो लिटररी डिवाइस यूज किया गया है वो है कॉन्ट्रास्ट, यानी दो चीजों के बीच में हम लोग कंपेरिजन दिखा रहे हैं। नंबर फिफ्थ, एज अ हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। और यहाँ पे सिमिली का प्रयोग किया गया है। सिक्स, शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नॉट लाइट इन हर आईज, और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का उपयोग किया गया है। सेवन, फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और यहाँ पे हाइपरबोली का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट, वेब ऑफ पॉवर्टी, और यहाँ पे हम लोग मेटाफर का प्रयोग देख सकते हैं। नंबर नाइन, स्क्राउचिंग फॉर गोल्ड, और यहाँ पे हम लोग मेटाफर का देख सकते हैं कि प्रयोग किया गया है। नंबर टेन, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, थ्रू द इयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। तो यहाँ पे हम लोग हाइपरबोली का इस्तेमाल देख सकते हैं। एंड द लास्ट वन, द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का यूज किया गया है, जहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि कैनिस्टर और उसके जो बैग के प्लास्टिक बैग के बीच में क्या कॉन्ट्रास्ट है। सो स्टूडेंट्स, वी आर डन विद दिस चैप्टर, अब हम लोग अपनी पोयम की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, और इसे लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने। तो सबसे पहले मैं आपको इसके पोएट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। ये एक इंग्लिश पोएट है और ये काफी सारे ऐसे भी लिखते हैं। इन्होंने अपनी जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है ऑक्सफोर्ड में, बिना डिग्री के साथ उन्होंने छोड़ दिया और वो चले गए थे 1930 में बर्लिन में। स्पेंडर को काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता था पॉलिटिक्स में और इसी वजह से उन्होंने अपने आप को एक समाजवादी और एक पैसिफिस्ट डिक्लेयर कर दिया था। उनके बहुत सारे पोएम के कलेक्शन हैं और उन्होंने थोड़ी शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है। क्लासरूम इन अ स्लम भी उन्हीं की लिखी हुई एक पोएम है जो कि सोशल इनजस्टिस को दिखाती है और क्लास इनइक्वालिटीज को बताती है। तो चलिए हम लोग इस पोएम के साथ शुरू करते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर द टॉल गर्ल विथ अ वेड हेड डाउन द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आईज द स्टंटेड अनलकी आयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स null disease his lesson from his desk at back of dim class one unnoted sweet and young his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. So, इस poem में जो description दिया जा रहा है वो एक ऐसे क्लासरूम का दिया जा रहा है जहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ते हैं. और वो गरीब बच्चे कैसे दिखते हैं? वो बिल्कुल ऐसे दिखते हैं जैसे कि जो अनवांटेड वीड्स होती है ना, बिल्कुल उसके जैसे हैं, जंगली घास जो उग जाती हैं, क्योंकि उन्हें कोई पसंद नहीं करता है, शायद उनके माँ बाप भी उन्हें पसंद नहीं करते हैं. अब वहां पे ये कंपैरिजन हम लोगों ने देखा और फिर ना उनके बाल जो है वो झड़े हुए हैं और उनके जो फेस है वो इतने ज्यादा डल हैं. और वो डल किसके कंपैरिजन में है कि उनके उम्र वाले जो बच्चे हैं, जो बाकी बच्चे हैं, जो थोड़े उनसे बेटर हालात में हैं, उनके जैसी इन लोगों में वो एनर्जी नहीं है. वहां पे एक लंबी लड़की भी है जिसका सर शर्म से झुका हुआ है क्योंकि वो इतनी ज्यादा गरीब है कि वो इस पोजिशन में ही नहीं है कि वो सर उठा करके भी देख सके. वहां पे एक ऐसा पतला लड़का है जो बिल्कुल पेपर के समान है कि वो इतना ज्यादा पतला है कि जैसे मानो पेपर हो. और उसकी आंखें जो है वो ग्रीडली हर जगह घूम रही हैं ताकि वो कुछ हासिल कर सके. और वहीं पे एक बच्चा है जो कि किसी डिजीज से, किसी बीमारी से सफर कर रहा है और वो बीमारी उसको उसके पिता से विरासत में मिली है, जबकि उसके फादर से उसे कुछ अच्छी चीज मिलनी चाहिए थी, फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसके गरीब जो पिता थे वो उसे बस अपना एक डिजीज ही दे सके जो उसके पिता को भी था और अब उसमें भी आ चुका है. फिर एक और बच्चे का यहाँ पे जिक्र होता है जो कि बिल्कुल अंधेरे एक किनारे में बैठा होता है और उसे क्लास में बिल्कुल भी उसका मन नहीं है, बल्कि उसका मन कहाँ पे है कि पेड़ पे जो गिलहरियां अपना खेल रही हैं वहां, वो वहां जाकर के खेलना चाहता है. सो इस पैराग्राफ में जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो सिमिली यूज हुई है. जब हम लोगों ने चिल्ड्रन को एक रूटलेस वीड से कंपेयर किया है तो यहाँ पे सिमिली है. मेटाफर यूज हुआ है जब हम लोग ने उस लड़के को एक पेपर से कंपेयर किया है. और रेपिटेशन हुआ है इसके फर्स्ट लाइन में जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फार फार फ्रॉम द कस्टी वेव्स. तो यहाँ पे हम लोग रेपिटेशन देख सकते हैं. मूविंग ऑन द सावर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज बेल्ड फ्लावरी टायरोलेस वैली ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड their all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky. तो यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो उस क्लासरूम की दीवारें हैं वो पहले वाइट थी और अब किस तरह से क्रीम हो चुकी है क्योंकि वो गंदी हो गई हैं और बहुत टाइम से उनको किसी ने पेंट भी नहीं किया. और वहां पे एक शेक्सपियर की फोटो टंगी होती है जो कि उनका जो बाल नहीं होता है वो थोड़े से चंदले होते हैं, तो वो उनका जो हेड है वो ऐसा लगता है जैसे कि उगता हुआ सूरज हो. वहां पे टायरोलीस वैली की भी बात की गई है कि वहां पे बहुत अच्छे अच्छे चित्र जो हैं और वो सारे चित्र कहाँ से आए, वो डोनेशन से आए, किसी ने उन्हें उस स्कूल में डोनेट किया है और वो सारे चित्र वहां पे लगे हुए हैं, लेकिन वो काफी मीनिंगलेस है उन लोगों के लिए. भले ही वो एक बहुत ही अच्छी पिक्चर है, खूबसूरत पिक्चर है, लेकिन जो उन बच्चों की जिंदगी है वो क्या है? वो उनका खुद का जो है वो झोपड़पट्टी है, उनका स्लम एरिया है. वहां पे जो वर्ल्ड मैप लगा हुआ है वहां बहुत सारी जगह, बहुत सारे शहर के बारे में वो इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन भी इन बच्चों के किसी काम की नहीं है क्योंकि अगेन उनका जो उनकी दुनिया है वो उनकी क्लासरूम के बाहर है और वो कहाँ है? उसी झुग्गी बस्ती में है, राइट? तो उनका जो फ्यूचर है वो भी जो है वो जैसे फॉग से पेंटेड हो, यानी इतना धुंधला है कि वो दिख भी नहीं रहा है कि उनका फ्यूचर किस तरह से होने वाला है. और यहाँ पे बात की गई है नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, यानी उनके जो फ्यूचर का स्कोप है वो काफी नैरो है, काफी पतला है और वाइड स्कोप नहीं है. या तो वो अपने जैसे पेरेंट्स जैसे गरीब रहेंगे या नहीं तो हो सकता है उनमें से कोई एक या दो इंसान कुछ आगे अपने लाइफ में बड़ा कर सके. और ये सारी चीजें जो पिक्चर में दिखा रहे हैं, रिवर्स हैं और जो स्टार ऑफ वर्ड्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो इन बच्चों से काफी दूर पे हैं. सो इस पैराग्राफ में जो लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है वो है मेटाफर, जहाँ पे हम लोग दीवारों के बारे में बात करते हैं, सावर क्रीम वॉल्स। एंड दूसरा जो हम लोग बच्चों के फ्यूचर के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, जब हम लोग बात करते हैं नैरो स्ट्रीट सील विद लेट स्काई, ये भी एक मेटाफर है। देन अगेन हमें रिपीटिशन दिखता है, जहाँ पे हम लोग फार फार हम लोग देख रहे हैं कि वो वापस से रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट, श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल, विद शिप्स एंड सन्स एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम fog to endless night. On their slang heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum. So blot their maps with slums as big as doom. अब ये जो झोपड़पट्टी के बच्चे हैं, उन्होंने अपने लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें देख ली हुई हैं कि उनके लिए हर दूसरा इंसान जो है वो उनका दुश्मन बन जाता है, और इसी वजह से ना वो शेक्सपियर को एक अच्छा एग्जाम्पल मानते हैं, वो उसे भी अपना दुश्मन ही मानते हैं, और ना ही जो है वो जो वर्ल्ड मैप उनके क्लासरूम में लगा है उसे अच्छा मानते हैं, क्योंकि ये सारी उन्हें ऐसी उम्मीद दिलाता है जो वो खुद भी जानते हैं कि वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। उनके लिए ये सारी चीजें जो है, जो फ्यूचर उनको दिखाया जा रहा है, वो उन्हें किस लिए फोर्स करता है, उन्हें चोरी करने के लिए फोर्स करता है, क्योंकि वो आज तक उन्होंने कभी प्यार अपने जीवन में महसूस ही नहीं किया है। उन्हें हर कोई जो है वो हमेशा भगाता ही आया है ना। हम लोग भी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी वो लोग आते हैं भीख मांगने के लिए या कुछ भी, तो कोई उनमें सटना भी नहीं चाहता है, क्योंकि वो लोग इतने गंदे हो रहे होते हैं, राइट। अब वो लोग अपने छोटे से घर में, अपनी छोटी सी जिंदगी में एडजस्ट हो चुके, अब उन्होंने अपने उसी घर को जो है अपना फेट मान लिया, अपनी किस्मत मान ली है, और वो लोग मोर और लेस वहीं एडजस्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे उनके माल न्यूट्रिशन के बारे में जो पोएट है वो बात कर रहे हैं कि वो इतने ज्यादा माल नरिश्ड हैं कि उनकी जो स्किन है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है उनका कपड़ा हो, और उसके अंदर से उनकी जो हड्डियां हैं वो झांक रही हैं, यानी वो इतने ज्यादा कमजोर हैं, इतने कुपोषित हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो उन्होंने कपड़े नहीं पहने हो, बल्कि उनकी जो चमड़ी है, जो स्किन है, वो ही उनका कपड़ा हो। और इसी वजह से जो वर्ल्ड मैप है वो वहाँ पे जो स्लम का एरिया है वो बढ़ता जा रहा है, उनकी जो बदकिस्मती है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और वो उस मैप पे एक धब्बे जैसा है जहाँ पे वो रहते हैं, और उनके जो चश्मे हैं वो स्टील के बने हुए हैं, यानी वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हैं, और उसमें से भी वो इतनी बार टूट चुके हैं कि उन्हें बार 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 रिपेयर किया गया है, यानी उन्हें किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं है, कोई भी ना उनके पास अच्छे कपड़े हैं, ना खाने को कुछ है, ना ही पहनने को कुछ है। सो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस यूज की गई है वो है मेटाफर, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं होम्स आर वेरी स्मॉल लाइक होल्स, ये एक मेटाफर है। सिमिली यूज किया गया है their repaired specs के लिए, जहाँ पे बात करते हैं like bottle bits of stone, like है तो मतलब simile, and alliteration use किया गया है the use of f sound from fog, है ना, दो consecutively f sound use किया जाता है तो इसे alliteration बोलते हैं। unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window and these windows that shut open their lives like catacombs break or break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let these tongues run naked into books the white and the green leaves open history theirs whose language is the sun. So is last paragraph mein poet hum logo se kehna cha rahe hain ki jab tak jo government hai aur jo public hai wo initiative nahi leti hai in bachcho ki zindagiyan sudharne mein, तब तक शायद ये बच्चे उसी अंधेरे में घुसे रहेंगे। लेकिन अगर पब्लिक खुद जाती है और उनके हेल्प करती है, और जो गवर्नमेंट है, इंस्पेक्टर हैं, विजिटर्स हैं, ये सारे लोग मिल करके इनका जो मैप है, जो वर्ल्ड मैप लगा हुआ है, उनके लिए वो सर्च कर सकते हैं। कैसे? कि उनकी हेल्प करके, उन्हें अच्छे चीज़ें प्रोवाइड करके, फैसिलिटीज प्रोवाइड करके, सो दैट कि वो पढ़ लिख करके बड़े हों और वो भी दुनिया घूम सकें। और ये जो चीज है, ये जो उनके साथ एक बदकिस्मती लगी हुई है, वो ब्रेक हो और वो भी ग्रीन फील्ड्स में जाकर के अपने आप को एंजॉय कर सकें, वो भी अपने स्लम एरिया से, अपने झोपड़पट्टी से निकल सकें और नेचर को जो है वो एक्सपीरियंस कर सके। यहाँ पे व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स का मतलब क्या है? व्हाइट लीव्स मतलब के बुक्स और ग्रीन लीव्स मतलब नेचर। तो वो नेचर में अपने आप को एंजॉय कर सके, टेंशन फ्री रह सके और अपना फ्यूचर जो है वो ब्राइटली पेंट कर सके। एंड अगेन यहाँ पे जो लिटररी डिवाइस यानी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है वो है मेटाफर, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन की, जो कि किसके रिस्पेक्ट में हम लोग बोल रहे हैं, बुक्स और नेचर को एक्सप्रेस करते हुए यहाँ पे मेटाफर का यूज किया गया है। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर, ये पोएम हो जाती है खत्म। अब हम लोग इसकी कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। थिंक इट आउट। सो यहाँ पे जो कुछ हमें लाइंस दी गई हैं, उस लाइन का हमें असल मतलब, जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, वो हमें बताना है। पहला है, अ टॉल गर्ल विथ अ हेड वेट डाउन मीन्स द गर्ल। सो ये जो लड़की का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि उसका सर जो है वो झुका हुआ था, वो किस वजह से था, तो इसका सही ऑप्शन है मीन्स द गर्ल इज इल एंड एग्जॉस्टेड, यानी वो बीमार है और काफी ज्यादा थक चुकी है। बी, द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स आईज मीन्स द बॉय इज, इसका आंसर होगा थिन, हंग्री एंड वीक। सी, द स्टंटेड अनलकी आयर और ट्विस्टेड बोन्स मीन्स द बॉय has an inherited disability, right? D, his eyes live in a dream, a squirrel's game in the tree room, other than this means the boy is distracted from the lesson, yani wo idhar udhar dekh raha hai, uska class mein man nahi lag raha tha, is wajah se wo classroom ke window ke bahar dekh raha tha. E, the children's faces are compared to rootless weeds, this means they are wasters, of course, kyunki उनसे किसी को कोई उम्मीद नहीं है, ना ही कोई उनके फ्यूचर पे पैसा लगाना चाहते हैं और उनको सब लोग समझते हैं कि वो एक वेस्ट है। नाउ अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। क्वेश्चन टू, व्हाट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ सावर क्रीम? व्हाई डू यू थिंक द पोएट हैज यूज्ड दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स? सो जो सावर क्रीम होती है, मतलब जो आप समझ लो दही, तो दही का कलर कैसे होता है, थोड़ा उसमें पीलापन होता है, पूरी तरह से वाइट नहीं होता है, और जो पोएट है उन्होंने सावर क्रीम का उपयोग इस वजह से किया है ये बताने के लिए, ताकि लोगों को ये बात समझ आए कि वो जो दीवार थी उस क्लासरूम की वो काफी गंदी हो चुकी थी और बहुत समय पहले उसपे किसी ने वाइट वॉश करवाया था और बहुत टाइम से उसपे किसी ने पेंट नया चढ़ाया भी नहीं है और इस वजह से वो काफी गंदी हो चुकी है और जो व्हाइट कलर है वो अब क्रीम कलर में बदल चुका है। क्वेश्चन नंबर थ्री, द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डेकोरेटेड विद द पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर, बिल्डिंग्स विद डूम्स, वर्ल्ड मैप्स एंड ब्यूटीफुल वैलीज, हाउ डू दीज कॉन्ट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन? सो भले ही उनके क्लासरूम में बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगी हो, अच्छी जगह की पिक्चर लगी हो, सीनिक पिक्चर हो या फिर एक फेमस पर्सनालिटी जैसे शेक्सपियर की भी पिक्चर लगी हो, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं, जिस दुनिया में वो स्लम के बच्चे रहते हैं, स्लम ड्वेलर्स रहते हैं, इनसे काफी ज्यादा अलग हैं, बिल्कुल ऑपोजिट ही। जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहां पे आए दिन कुछ ना कुछ क्राइम होता रहता है और इस वजह से उन लोगों को हर दूसरे इंसान से डर लगता है, हर दूसरे इंसान को वो लोग अपना दुश्मन समझते हैं और इसी वजह से शेक्सपियर भी उनके लिए एक दुश्मन ही है। और जहां अगर हम लोग बात करें कि वादियों की पिक्चर और जो वर्ल्ड मैप लगा हुआ है ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है उनके फ्यूचर से, राइट? जो पिक्चर में दर्शाया जा रहा है जिस जगह को, उस जगह जो है ये बच्चे जा नहीं सकते हैं, उस खूबसूरत वादी में वो लोग नहीं जा सकते हैं और वहीं जो मैप है वहां इन स्लम एरियाज का कोई जिक्र ही नहीं है। तो एक तरह से ये लोग इसी वजह से वीड्स हैं, इसी वजह से वेस्टर्स हैं, क्योंकि ये लोग इतने भी केपेबल नहीं कि ये मैप पे जिस जगह ये लोग रहते हैं उस जगह को दिखा सके, राइट? किसी भी मैप पे हम लोग स्लम नहीं देखते हैं। कोई भी कंट्री इनफैक्ट दिखाना नहीं चाहती कि उसके पास स्लम है और ये बहुत ही दुख की बात है कि इंडिया जो है वो एशिया का लार्जेस्ट स्लम होल्ड करता है मुंबई में धारावी। सो अब हम लोग इसके नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स, हाउ कैन देयर लाइव्स बी मेड टू चेंज. पोएट को इन झोपड़पट्टी के बच्चों के लिए क्या चाहिए और किस तरह से इनके लाइफ जो है वो चेंज हो सकती हैं. तो अगेन, उससे क्या चाहिए, वो पोएट हमें ये बता रहे हैं कि जो गवर्नर हैं, इंस्पेक्टर हैं, जो विजिटर हैं, वो स्कूल में जब जाएं तो उन लोगों के दर्द को समझें, उनके फ्यूचर के लिए कंट्रीब्यूशन दें अपना, और वो चीज़ समझें कि ये बच्चे जब यहाँ से निकलेंगे तो हमारी कंट्री को वो कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकते हैं, और इसी वजह से हमें उनके बेटरमेंट के लिए काम करना चाहिए. उन्हें जो चीज़ें हैं, जैसे उनकी एजुकेशन के लिए जो बुक्स चाहिए, जो कपड़े चाहिए, बैग है, नोटबुक है, खाना है, ये सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए और इन्हें बढ़ने देना चाहिए, है ना. नेक्स्ट पार्ट, हाउ कैन देयर लाइव्स बी मेड टू चेंज. अगर ये सारी चीज़ें, ये बच्चे जो हैं वो बाल मजदूरी में क्यों घुस जाते हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स मजबूर होते हैं कि पहली बात तो ये इनके पास पैसे नहीं होते हैं कि ये अपने बच्चों को स्कूल्स में पढ़ा सकें, और दूसरा कि इनके पास रिसोर्सेज इतने कम होते हैं कि इन्हें लगता है कि सारे लोग अगर घर के मिल करके काम करेंगे तो कुछ ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे और ये लोग दो वक्त की रोटी खा सकेंगे. सो इनके लाइफ में जो सबसे बड़ा सवाल होता है वो होता है रोटी का. अगर हम लोग किसी तरह से उनकी ये भुखमरी ख़त्म कर दें तो काफ़ी कुछ बदला जा सकता है, और पोएट जो है हमारा जो ध्यान है वो इसी तरफ केंद्रित करना चाह रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी ये पोएम भी हो जाती है ख़त्म. ये काफ़ी एक जागरूक कर देने वाली पोएम थी, जो हम लोग अपने आसपास बहुत बार देख रहे होते हैं, चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अपनी आवाज़ नहीं उठाते. लेकिन जब तक हम लोग इन लोगों के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ये लोग उसी अंधेरे में पड़े रहेंगे, और अंधेरे से उजाले की तरफ हमें ही शायद इन्हें निकालना पड़ेगा इनका हाथ पकड़ के. इसी थॉट के साथ ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म, एंड मैं आपको आपके नेक्स्ट चैप्टर में मिलती हूँ. थैंक यू.
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद.